समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, आपके मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं विमलेंदु पांडे। आज के इस कार्यक्रम में हम आरोग्य और स्वस्थ जीवन के लिए योग की भूमिका पर चर्चा करेंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं योग विशेषज्ञ डॉ सुरक्षित गोस्वामी और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग थेरेपी विभाग के डॉ ईश्वर एन आचार्य। आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। योग के विभिन्न पहलुओं और इसके महत्व के बारे में आप अपने सवाल डॉ सुरक्षित गोस्वामी और डॉ ईश्वर आचार्य से सीधे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2331-4444 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले 011 डायल करना न भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से भी स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। भारत भूमि हमेशा से ज्ञान और आध्यात्म की भूमि रही है। हमारे यहां मनुष्य शरीर को दिव्यता की स्थिति प्राप्त करने का एक साधन माना जाता रहा है। मृण्मय से चिन्मय की यात्रा यहां हजारों वर्षों से योग के माध्यम से की जाती रही है। आज की बदलती जीवन शैली में इस समय योग सर्वाधिक प्रासंगिक हो गया है और अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। जी आप बताएं गोस्वामी जी।
जी तो बेसिकली योग साधना एक ऐसा अभ्यास है जो हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचाता है।
जी जी।
तो इसमें सबसे पहले हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि शरीर कैसे हमारा स्वस्थ हो सके। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम और भीतर की यात्रा कर नहीं सकते। तो शरीर को स्वस्थ करना जरूरी होता है, फिर हम अपने इंद्रियों को और अपने प्राणों को बल देते हैं, फिर अपने मन को एकाग्र करते हैं, मन को शांत करते हैं और मन को अंतर्मुखी यात्रा की ओर लेकर जाते हैं।
जी जी।
क्योंकि मन तो क्या है कि बाहर की तरफ भाग रहा है ना,
मन तो चंचल रहता
है, चंचल है, और योग का मतलब ही है जुड़ जाना।
जुड़ जाना
तो जुड़ना है अपने भीतर से। तो इसलिए योग के अभ्यास हमें अपने ही स्वरूप से अंतरतम से जोड़ते हैं। तो मन जो है फिर वो अंदर की यात्रा प्रारंभ करता है।
जी। अभी हमारे एक श्रोता है दरभंगा बिहार से मोहन पासवान जी। मोहन जी नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार सर, धन्यवाद
जी।
सर योग और व्यायाम के बाद लोग किस प्रकार का भोजन करें जिससे पूर्ण रूप से शरीर स्वस्थ रहे जीवन भर। सर दूसरा सर योगासन तथा व्यायाम के बाद लोगों के शरीर में प्रतिदिन कितना कैलोरी ऊर्जा पड़ना चाहिए बच्चे जमा और बूढ़े। सर
जी धन्यवाद। ईश्वर आचार्य जी आप बताएं।
आपका प्रश्न है जहां तक मैं समझता हूं कि योग करने के बाद व्यायाम के बाद किस तरह का आहार लेना चाहिए। अब जब हम योग की बात करते हैं तो इसमें कुछ सात्विक आहार की बात किया गया है। उस तरफ से हम जितना सात्विक आहार ले सकेंगे उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। जब हम इसमें हठ योग की बात करते हैं तो वो आधा अंश जो सॉलिड फूड का जो कंज्यूम करने के लिए बात करता है, एक अंश जो पानी का है और एक अंश खाली रखने का या वायु संचारण के लिए खाली रखने का, ये एक नियम इसमें बना है। इसमें कोई ऐसे कोई नियम नहीं है कि भाई यही खाना है ये नहीं खाना है इस तरफ से। हालांकि जो योग प्रतिनिधित्व करता है तो शास्त्रों के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ आसन करते हैं तो इसमें ये भी लिखा गया है कि इवन आप विष भी ग्रहण करेंगे तो भी हजम हो जाए।
अच्छा, लेकिन मतलब जब आप भोजन करके उठें तो ऐसा लगना चाहिए और खा सकते हैं।
अच्छा,
मतलब भरपेट आकंठ यदि आपने खा लिया भोजन तो वो पाचन अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा।
अच्छा,
अब जैसे मान लो कपड़े धोने की मशीन में आप कपड़े अच्छी तरह ठूस दें
जी
और फिर मशीन चलाएं,
हाँ, तो फिर वो निश्चित रूप से,
या मसाला कूटने की मिक्सी में हम, तो इसलिए सात्विक भोजन जो है बिल्कुल चबाकर पूरे भाव से, ये भाव हो कि ये भोजन मेरे अंदर जाकर मेरे बल बुद्धि आयु आरोग्य और प्रीति को बढ़ाएगा।
अच्छा, एक चीज और है, क्या योग के लिए शाकाहारी भोजन अनिवार्य है?
योग के लिए शाकाहारी भोजन अनिवार्य है, क्योंकि योग असलत में केवल उछल कूद तो है नहीं।
जी जी बिल्कुल सही।
योग शरीर को हिलाने डुलाने की क्रिया तो है नहीं।
जी जी,
योग तो अपने साथ जुड़ने का अभ्यास है। तो जब आप शाकाहार होते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है,
ठीक,
निरोगी हो जाता है, सात्विक हो जाता है और तैयार हो जाता है अंदर की यात्रा के लिए,
ठीक।
और यदि आप मांसाहार कर रहे हैं तो शरीर भारी है, वैसे ही वहां पर हिंसा हो गई,
हिंसा हो गई।
और योग का अभ्यास अष्टांग योग में, यदि आप अष्टांग योग देखते हैं तो वहां पर तो सबसे पहला जो अंग है वो अहिंसा है,
जी।
अहिंसा से यम में सबसे पहले अहिंसा है, तो अहिंसा से जिस साधना का अभ्यास शुरू हो रहा है
जी,
तो ऐसे में वहां पर हम मांसाहार करेंगे,
हाँ,
तो वो तो उसका आधार ही हिल गया।
विरोधाभास।
तो ये संयम है, पहला इसका अनुष्ठान है पातंजल योग दर्शन का यम। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। और हमारे एक नए श्रोता आ गए हैं हिमाचल प्रदेश में, मंडी से योगेश जी हैं। योगेश जी, अपना सवाल पूछें।
जी नमस्कार
जी।
मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, योग का अभ्यास करने के लिए योग को सिखाने वाले प्रशिक्षक क्या इंटरनेट के माध्यम से भी मिल सकते हैं? कहा जाता है कि योग की विधि या प्रक्रिया सही तरह से होनी चाहिए। मेरे इलाके जैसे क्षेत्र जहाँ कोई योग प्रशिक्षक नहीं है, यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इंटरनेट ही एक ऑप्शन बचता है। और यूट्यूब के माध्यम से योग का अभ्यास करना क्या ठीक है? वहाँ पर तो हमें बहुत सारी वीडियोज मिल जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न साथ साथ ये है, बहुत से सैकड़ों की संख्या में योगासन उपलब्ध है, तो कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए? क्योंकि सभी की प्रैक्टिस करना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। धन्यवाद
जी। जी गोस्वामी जी, बताएं आप इसके बारे में।
तो योग का अभ्यास दो तरीके से होता है। पहला अभ्यास है योग की साधना,
ठीक,
और एक दूसरा है योग की चिकित्सा। जब हम योग के माध्यम से चिकित्सा कर रहे हैं, किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो वहां पर योग एक्सपर्ट की आवश्यकता है ही है। एक है योग साधना, शरीर स्वस्थ है, बस उस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें योग का अभ्यास करना है। तो वहां पर जो हल्के फुल्के अभ्यास हैं, जैसे एक प्रोटोकॉल भी तैयार किया गया है जो 21 जून को सभी पूरे देश में उस प्रोटोकॉल के तहत जो योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है, तो वो प्रोटोकॉल बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है और उसके तहत उसी क्रम में यदि अभ्यास किया जाए, वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रोटोकॉल है,
ठीक,
कि सभी उसको कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई बीमारी है, मान लो गर्दन दर्द है, किसी को बैक पेन है, किसी को नी पेन है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो वहां पर एक्सपर्ट की एडवाइस होना बहुत जरूरी हो जाता है।
गोस्वामी जी, एक चीज और भी है कि हम कौन सा आसन कितनी देर तक किस पोस्चर में हम रखें,
हाँ,
ये क्या बगैर गुरु के संभव हो पाता है?
महर्षि पतंजलि ने इसमें बहुत अच्छा कहा है।
जी,
कह रहे हैं आसन, हाँ, की परिभाषा दी है स्थिर सुखम आसन।
अच्छा,
स्थिरता से सुखपूर्वक बैठने के अभ्यास को आसन कहते हैं। अब आसन कब तक किया जाए? जब तक आप स्थिर रहें और वहां पर सुख की अनुभूति होती रहे, तब तक आप उस आसन में स्थिर रहें। और इसका क्या लाभ होगा? शरीर में स्थिरता आएगी और सुख उत्पन्न होगा। और कब तक करना है? जब तक स्थिर है और जब तक सुख है। वही परिभाषा है, वही उसका लाभ है और वही उसकी समय सीमा है।
आचार्य जी से मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे श्रोता ने पूछा
जी
कि गुरु की आवश्यकता होती है, तो अगर किसी को प्रशिक्षक बनना है योग में
जी,
तो उसके लिए हमारे कौन कौन से देश में संस्थान हैं और उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?
इसमें योग्यता के हिसाब से अभी हमारे जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बना है, बकायदा मंत्रालय के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल है
जी।
इसमें जिनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उन लोग भी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की एग्जाम पास करके लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री इस तरह की एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वो वैलिड हो जाएगा सिखाने के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, आज के दिन में सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर ग्रेजुएशन है, 3 साल की रेगुलर फुल टाइम योग में ग्रेजुएशन का
ये कहां कराई जाती है।
मैं आ रहा हूं इसी
जी जी।
दूसरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, 2 साल की जो रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, उसके बाद पीएचडी तक, ये सब प्रावधान है। हमारे देश में लगभग 250 ऐसे योगा डिपार्टमेंट है, विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, इन सब जगह आप लोग इसको कर सकते हैं इसको।
ठीक है, और आपके मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में भी प्रवेश इसी आधार पर मिलता है?
जी बिल्कुल, हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है
जी,
उसके लिए भी हम आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो उसकी जो एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। हमारा 1 साल का जो डिप्लोमा है वो नेशनल लेवल पर एंट्रेंस होता है
जी,
उसको पास कर लिया तो वो एडमिशन मिल जाता है, 1 साल का रेगुलर डिप्लोमा कर लिया तो वो योग टीचर बन सकता है।
ठीक,
क्योंकि अच्छी तरह से जब व्यक्ति जो योग टीचर बनना चाहता है यदि उसको गहराई से समझे, क्योंकि योग तो समुद्र है,
समुद्र
सागर है,
बिल्कुल बिल्कुल,
तो जितना उसमें डूबता जाएगा उतरता जाएगा उसके उतने ही माणिक्य उसको प्राप्त होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमने भी जब योग डिप्लोमा किया तो उसके बाद फिर योग में ग्रेजुएशन किया, फिर 1995 में हमने योग में एमए किया, फिर हमने 98 में योग में पीएचडी की, फिर यूनिवर्सिटी में हमने 8 साल पढ़ाया। तो हमने कोशिश की कि योग का जो केवल एक शारीरिक पक्ष है, केवल वही नहीं बल्कि उसका मानसिक पक्ष, उसका आध्यात्मिक पक्ष और जो प्रैक्टिशनर
वाला, अनुभूति वाला जो पक्ष है उसका,
बिल्कुल, तो प्रैक्टिशनर को वहां तक पहुंचना है, आध्यात्मिक पक्ष तक पहुंचना है, ना कि केवल शारीरिक स्तर तक रहना।
इसलिए आमतौर पर हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है, एक्सपीरियंशियल साइंस है।
ठीक है, हमारे एक श्रोता है हिसार से हरियाणा में, राजेंद्र जी।
नमस्कार जी, और विशेषज्ञों को भी नमस्कार।
जी जी नमस्कार आपको भी।
मैं को ये जानना था जैसे डिप्रेशन के लिए सही योगा कौन सा है और सही समय क्या है, और ये जो मतलब एक जो फॉग होता है, जो धुंध होती है, या उसमें करने का सही रहता है या गलत रहता है, किस टाइम पे करना चाहिए, ये जानकारी थी। नमस्कार
जी, ईश्वर आचार्य जी बताए।
डिप्रेशन में आमतौर पर जो हमारा जो एनर्जी है वो लो रहता है। अब योग की हिसाब से जो प्रैक्टिसेस, मतलब लार्ज एक प्रिंसिपल हम ये अपनाएंगे कि जहां पर थोड़ा एक्टिविटी बढ़ जाए शरीर की और हमारे जो ऊर्जा है उसका जो लेवल बढ़ जाए, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिसेस चुन सकते हैं। लाइक कपालभाति है, थोड़ा फास्ट ढंग से डायनामिक सूर्य नमस्कार कहते हैं, इस तरफ से कर सकते हैं। आसनास तो लगभग जितना भी आसन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम का पाबंदी नहीं, जिस दिन आपका मन लग गया, जिस दिन से आपने चालू किया, वही सही समय है, मैं ये समझ लूंगा।
लेकिन ये डिप्रेशन शब्द इतना आरोपित कर दिया गया लोगों ने कि जरा सा भी कुछ व्यक्ति मायूस हो रहा है, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ।
ये तो ये मानसिक शक्ति का जो एक एक, एक तनावपूर्ण जीवन शैली जो हमने अपना ली है,
स्ट्रेस एक शब्द जैसा हमने ओढ़ लिया, डिप्रेशन ओढ़ लिया, इरिटेशन ओढ़ लिया, है नहीं है
ये मानवीय, ये भारतीय शैली नहीं रही है।
नहीं रही भी नहीं है और वो है भी नहीं, लेकिन हमने कहा मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। हमने ऐसा ओढ़ा, ऐसा ओढ़ा जो प्रॉब्लम नहीं थी, हम उसके भी हिस्सा बन गए।
सुरक्षित जी, आसन और योगासन में क्या अंतर है, बेसिक चीजें?
जो मुझे मेरे स्वरूप तक पहुंचा दे वो योगासन है, मतलब कि जो ध्यान की ऊंची अवस्था में प्राप्त करा दे वो योगासन, योग से मतलब जो मुझे कनेक्ट कर दे, ऐसा आसन जो मुझे मेरे योग से, योग मेरा मतलब मेरा आत्म तत्व, ऐसा आसन जो मुझे मेरे आत्म तत्व तक पहुंचा दे,
मतलब चिन्मय स्तर तक पहुंचा दे, चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचा दे।
तो मतलब जैसे हम ध्यान के लिए एक आसन लेते हैं, चाहे वो पद्मासन हो, सुखासन हो, स्वस्तिक आसन हो, भद्रासन हो, तो वो जो आसन है जो मुझे ध्यान और समाधि तक पहुंचा रहा है, तो पहले तो हमने आसन लगाया, तो वो अभी आसन था, लेकिन जब वही आसन मुझे ध्यान और समाधि तक पहुंचा रहा है तो वो मेरा एक योग आसन हो, मतलब योग तक उस आसन ने मुझे जोड़ दिया।
पतंजलि ने, मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, पतंजलि जी ने उसकी जो आसनास की डेफिनेशन तो दिया ही, व्याख्या तो दिया ही है, उसका इफेक्ट भी बताया क्या है, ततो द्वंद्वान अभिघाता, मतलब जहां द्वंद्व खत्म हो गया,
द्वंद्व यानी दो परस्पर विरोधी चीजें,
विरोधाभास जहां खत्म हो गया उसके लिए भी। दूसरा जो इफेक्ट ये बताया कि प्रयत्न शैथिल्याम अनंत समाप्यतिभ्याम, मतलब प्रयत्न शैथिल्य होकर जब आप बैठेंगे और अनंत की इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, वो प्राइमरली योगासन
है, क्योंकि ये जो है ये अप्रयास की साधना है,
बिल्कुल
ये प्रयास हो जाना, ये प्रयास की साधना नहीं, जब आप प्रयास कर रहे हैं तो वो आसन है, जब वो अप्रयास हो जाए तो वो योग आसन हो गया।
जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे एक श्रोता हैं संजीव जी, हरियाणा में करनाल से। संजीव जी नमस्कार। जी जी, आप अपना सवाल पूछें।
जी जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार।
नमस्कार संजीव जी।
हाँ जी सर, मेरा सवाल
लगता है कि इनकी आवाज कट रही है।
हेलो।
जी हाँ जी, आप अपना सवाल दोहरा लीजिएगा।
हेलो।
हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है संजीव जी, आप सवाल पूछें। लगता है कि इनका संपर्क टूट गया है। सुरक्षित जी, हम लोग बात कर रहे थे अष्टांग योग पर, पातंजलि योग सूत्र के बारे में। पहले पर तो आपने बताया कि यम यानी जो संयम है, सबसे पहला शर्त या पहला अध्याय यही है। दूसरा है नियम।
तो अष्टांग योग एक ऐसी साधना है जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में दी है, तो उसमें अष्टांग योग मतलब आठ अंगों वाली साधना।
जी,
अब ये सीढ़ी नहीं है।
हाँ,
ये अंग है। अच्छा, जैसे बच्चे के अंग एक साथ पनपते हैं, ऐसा नहीं कि आज सीधा हाथ बढ़ा और अच्छा, कल को अच्छा, उल्टा हाथ बढ़ा, ऐसा नहीं, एक साथ सभी अंगों का विकास होता है। तो अष्टांग योग में भी आठ अंगों की साधना का एक साथ विकास होता है, और उसका आरंभ होता है यम से, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहला जो है वो यम है, कि यदि हम, चूंकि हम तो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो समाज में कैसे रहें, समाज में रहने का एक आदर्श व्यक्तित्व क्या हो, वो हमें यम सिखाते हैं।
ठीक है, हमारे एक और श्रोता आ गए हैं महाराष्ट्र में, ठाणे से, गुरुनाथ जी।
हाँ जी सर, नमस्ते।
नमस्ते गुरुनाथ जी, अपना सवाल पूछें।
सर मेरा क्वेश्चन है, योग करने से मतलब हमारे जो इंद्रिय होते हैं इनपे कितना हम नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों के वजह से जब हमारे हस्तक कुछ अच्छे बुरे काम भी हो जाते हैं, और क्या हार्ड का मतलब जो जिनको हार्ड की बीमारी है उनको कौन सा मतलब करना चाहिए योगा, और कौन सा आसन करना चाहिए? थैंक यू सर।
देखो, इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, चाकू का दोष नहीं होता, वो सब्जी काट रहा है या उंगली काट रहा है।
जी जी जी,
दोष उसको चलाने वाले का होता है। तो इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं करती, उसके पीछे बैठा हुआ मन ही इंद्रियों से सब कुछ कराता है।
ठीक,
तो जैसा मन होता है वैसा इंद्रियां उसके साथ होकर कार्य करती हैं।
तो सुरक्षित जी, यही तो है तन मन और धन, ये जो तीन चीजें हैं हमारी संपदा है।
हाँ,
तो ये तन और मन को साधने की कला हम इस योग से कैसे करें?
यदि हमने मन को नहीं साधा तो तन को साधना मुश्किल है, और यदि हमने तन को नहीं साधा तो मन को साधना मुश्किल है। इसलिए योग के आसन तन को साध देते हैं, और योग के प्राणायाम और ध्यान मन को साध देते हैं।
तो ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं,
बिल्कुल आपस में जुड़े पड़े हैं, क्योंकि शरीर को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, जब वो सबसे छोटा हो जाए उसे मन कहते हैं, और मन को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, जो सबसे बड़ा हो जाए उसे तन कहते हैं। तो तन का सूक्ष्म भाग मन कहलाता है, और मन का स्थूल भाग तन कहलाता है। इसलिए साइकोसोमेटिक डिजीज पैदा होती है, मन से चलती है और तन पर आती है, और कुछ बीमारियां तन से चलती हैं और मन पर जाती हैं, क्योंकि आपस में जुड़े पड़े हैं।
अभी ये इंद्रियों की बात कर रहे थे, हमारा पांचवा वो चरण था प्रत्याहार का। तो प्रत्याहार में इंद्रियों को मतलब उनके विषयों से हटाना।
हाँ बिल्कुल,
क्योंकि ये जो स्टेज है कि हम मतलब चार तो बहिरंग हो गए, जैसे हाँ, आपने बताया कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये तो बहिरंग बाहर से दिख रहे हैं।
हाँ,
लेकिन जो अंतरंग हैं, जिनमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति है। तो प्रत्याहार में जो अभी सवाल कर रहे थे हमारे श्रोता कि हम कैसे इंद्रियों पर वश करें, तो वो क्रिया क्या होती है?
अब ध्यान के अभ्यास जब हम बैठ जाते हैं प्राणायाम के बाद, क्योंकि प्राणायाम यदि हमने नहीं साधा तो हम इंद्रियों को या मन को नहीं साध सकते। मन सूक्ष्म है, प्राण स्थूल है, प्राण के माध्यम से मन को साधा जा सकता है, क्योंकि चले व्यति चलम चित्तम। तो यदि प्राण अव्यवस्थित है तो मन अव्यवस्थित, यदि प्राण संतुलित हो गया तो मन संतुलित हो गया। तो प्राणायाम के बाद जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों को प्रत्याहार करते हैं, मतलब विषयी और इंद्री जो जावे अपने स्वादन को ललचावे, तिनकी और न जाने देही प्रत्याहार कहावे यही।
बहुत सुंदर। हमारे एक श्रोता है धर्मवीर जी दिल्ली से। धर्मवीर जी नमस्कार।
पांडे जी नमस्कार, आचार्य जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा
हूँ। जी नमस्कार। जी जी,
मेरा सवाल यह है कि मेरे दो सवाल हैं। योग हमारा बहुत पुराना ही है, ऋषियों के द्वारा दिया गया है, और ये इसके जिम्नास्ट और जिम, आजकल बच्चे जिम में ज्यादा जाते हैं, जिम्नास्ट बहुत फास्ट है पर उसमें भी कुछ योग की क्रिया चलती है, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इनो डिफरेंट है, तो इसमें एक ये बताइए कि जिम वाले बच्चे आजकल बहुत प्रोटीन खाते हैं, साइड इफेक्ट बाद में उनके होता है, योग क्या कहता है कि उनको क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे बच्चों के आजकल के जो बच्चे हैं इनको उनकी आगे की जो राह है आसान बने, क्योंकि मसल तो बन जाती है पर साइड इफेक्ट छोड़ जाती है, इसके लिए आप आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
इसमें हमने पहले स्रोत का जो क्वेश्चन था शायद डाइट क्या
के बारे में था,
बच्चों में भी बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, जो योग करते हैं बड़े या छोटे हैं जो भी हो उनके हिसाब से अपना आहार लेते रहेंगे, जितना भूख लगता है उसकी थोड़ा, जैसे सुरक्षित जी ने ऑलरेडी बताया था उसको कुछ कम खाए, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है मैं नहीं समझता हूँ कोई भी योग साधक के लिए उस तरह की आवश्यकता पड़ेगा, मैं नहीं समझता हूँ।
योग तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है,
प्राइमरली फिजिकल नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट माफी मान लीजिए थोड़ा आसनास ही ज्यादा करते हैं, थोड़ा फिजिकल फिटनेस,
लेकिन जिम में जो कराया जाता है वो प्योरली एक्सरसाइज है,
वो तो प्योर एक्सरसाइज होगी,
उसमें वो मन जो है उससे जुड़ता नहीं है अपने तन से,
जो जिम्नास्टिक है इसमें शायद मन की कनेक्शन हम यही कह सकते हैं कि ना के बराबर है।
अच्छा,
तो जिम्नास्ट जो है वो अंतर्मुखी यात्रा का हिस्सा नहीं
है? नहीं है, वो तो
योग अंतर्मुखी यात्रा ही है।
ये बिल्कुल सही। अच्छा सुरक्षित जी, ये आसनों का क्रम क्या होना चाहिए? आमतौर पर एक हमारे श्रोता पूछ भी रहे थे, एक सामान्य व्यक्ति को कौन कौन से नियमित आसन करने चाहिए?
वैसे आसन जो है वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हमारे होने चाहिए, मतलब वो आसन जो सबसे पहले स्थूल आसन है, स्थूल का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट हो रहा है, तो वहां से शुरू करते हुए और धीरे धीरे हम शवासन की तरफ पहुंचते हैं। तो जैसे हम खड़े हैं और खड़े होकर सबसे पहले हमने योग के आसन कर लिए जिसमें हाथ पैर अच्छी तरह से हमारे पूरी तरह से फैल रहे हैं, फिर कमर के बल लेट कर करने वाले कुछ आसन का अभ्यास किया, फिर पेट के बल लेटने वाले अभ्यास किए, फिर बैठ कर अभ्यास किए, और अंत में फिर हम शवासन का अभ्यास करें। तो यदि हम खड़े होने वाले तीन चार आसन निकाल लें अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, रोग के हिसाब से, बल के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से, फिर ऐसे ही कमर के बल लेटने और पेट के बल लेटने, तो ऐसे चार पांच आसन एक एक उस क्रम से निकाल लेंगे तो 15-20 आसनों का एक अच्छा क्रम तैयार हो जाएगा।
अभी इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी फोन लाइन पे हमारे श्रोता है जुगल पासवान जी, ये दरभंगा बिहार से हैं। पासवान जी नमस्कार।
नमस्कार
जी, सवाल पूछें अपना।
योग के बारे में कि सरकार को, मतलब कि जैसे संसार में जैसे विरोधी कालीन जो
जी
विरोधी कालीन जो मतलब कि बन सुनते हैं?
हाँ जी बताएं, आप अपना सवाल पूछें, सहजता से पूछें। ये लगता है पूछना चाह रहे हैं पासवान जी कि विपरीत परिस्थितियों में हम योगासन से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं जो हम समझ पा रहे हैं। ईश्वर जी बताएं आप इस बारे में।
विपरीत परिस्थिति मतलब लाइफ का कुछ इंसिडेंसेस हो सकता है या नेचुरल क्लाइमेटिस हो सकता है इस तरफ से।
हाँ।
देखिए जो प्राइमरीली जितना भी जो योग की फोकस है वो मन की नियंत्रित करना या मन को एक समस्थिति में रखना, इक्विलिब्रियम में रखना है, समत्वम योग उच्चते कहते हैं
जी।
मतलब हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, इस तरह की जितना भी जो द्वंद्व है लाइफ की, उसमें एक समत्व डेवलप करने के लिए योग सहायता करता है। चाहे वो आसन के द्वारा हो सकता है, प्राणायाम के द्वारा हो सकता है, धारण के द्वारा हो सकता है, ध्यान के द्वारा हो सकता है, या सब मिलाकर भी हो सकता है
जी।
जब लॉन्ग टर्म हम करने लगते हैं तो अपने आप एक जो समस्थिति है वो अंदर से अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं।
तो असल में होता क्या है, बचपन से ना सबकी तैयारी होती है भैया लाभ मिलेगा जीवन में, प्रॉफिट
ठीक
है ना, जीत मिलेगी, सुख मिलेगा, तो जो अच्छा है उसकी तैयारी करा दी जाती है
ठीक है।
और जो उसका दूसरा पक्ष है, यदि हानि हुई
तो
आप कैसे तैयार हैं, है भी या नहीं, यदि किसी ने अपमान कर दिया तो आप तैयार हैं उसके लिए। हमने माला पहनने सम्मान के लिए तो अपने को तैयार कर लिया, सज धज गए, लेकिन अपमान के लिए तैयार ही नहीं किया। तो जब दूसरा पक्ष जीवन में खड़ा होता है तो हमें लगता है वो विपरीत परिस्थिति है, विपरीत कुछ है ही नहीं, क्योंकि मान है तो अपमान भी है, सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। जब ये पता लग जाए कि दोनों साथ साथ चलेंगे, जितना जीवन में सुख आया है दुख भी उसी अनुपात में आ ही जाएगा,
तो उसको हम एक सहज रूप में स्वीकार करना भी सीख जाएंगे।
हाँ बिल्कुल, वो योग वो सिखाता है,
समत्व योग उच्चते।
अच्छा, योगासनों में 84 बुनियादी आसन माने जाते हैं जिनसे व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर को उन्नत करता रहता है, लेकिन कुछ विशेष बीमारियों के लिए आसन निश्चित किए गए हैं क्या? जैसे डायबिटिक है, आजकल बहुत लोगों को मधुमेह की बीमारी है, कुछ लोगों को हार्ट की बीमारी है, कुछ लोगों को किडनी की बीमारियां होती हैं, तो ऐसे कुछ निश्चित बीमारियों में कुछ आसन बताए गए हैं?
जब अष्टांग योग की जब हम बात करेंगे तो वहां कोई आसन के नाम नहीं बताया गया या इतना नंबर से ऐसे नहीं बताया गया
जी।
लेकिन उसके बाद की जो हटियों की जितना भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट है वो अपना अपने हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग नंबर्स बताया, अलग अलग नाम बताया, उसका टेक्निक बताया।
जी
फॉर एग्जांपल हटियोग प्रदीपिका, उसमें 15 आसनी ही दिखाया है, उसका पूरा वर्णन दिया है, वो कहाँ कहाँ यूजफुल है, उसका उपयोगिता भी कहीं जगह
बताई गई है।
ऐसे गैरण संहिता है, उसमें 32 आसनास की 36 आसन की के बारे में विस्तृत वर्णन है। कुछ और हटियोग की जो आसन जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट है हमारे, उसमें 84 आसनास तक बताया गया है। इसमें कहीं ऐसे नहीं है कि आपको 84 ही करना है, 32 ही करना है, 15 ही करना है, ऐसे कहीं नहीं। अभी हम आप जो बता रहे थे कि डायबिटीज के बारे में, जब डायबिटीज की जो बात आती है तो जहां पर अपनी जो पैंक्रियास को इफेक्टिव देने वाला जो आसनास है उसको हम करते रहेंगे तो उसमें
अर्धमत्स्येन्द्रासन।
एक श्रोता है ओडिशा से, हमारे कल्पतरु जी हैं। कल्पतरु जी नमस्कार, जल्दी से अपना सवाल पूछें।
नमस्कार सर। नमस्कार
जी।
तो सर ये एक पूछना था कि मिसेस की घुटने में क्या दर्द होता है
जी,
तो इसकी कैसे इलाज किया जाए सर?
तो यदि वजन ज्यादा है, कई बार घुटने के दर्द का कारण अलग अलग होता है, अब यूरिक एसिड देखना होगा, वजन देखना होगा, उनका घुटना मोड़कर या क्रॉस लेग करके ज्यादा देर तो नहीं बैठते, लगातार खड़े होने वाला काम तो नहीं है, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए एक तो पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी हो जाएंगी, जिसमें पैर सामने फैलाकर बैठ के पंजे को आगे पीछे खींचा, गोल गोल घुमाया, और ऐसे ही पैरों की जो अभ्यंगम है, जो मालिश है, जो महानारायण तेल से यदि पैर की घुटने की मालिश करें, जंघा के ऊपर भी, काफ मसल्स में भी, तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा
जी। जी श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए सुरक्षित गोस्वामी जी और ईश्वर एन आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद
श्रोताओं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए देख सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।
इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम आपके साथ चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विमलेंदु पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।